आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की कानून साज असेंबली में तीसरी मर्तबा तारीख साज कामयाबी हासिल की है। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद सरकार तश्कील देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा के आवाम ने तरक्की और अच्छी हुक्मरानी पर बीजेपी को ये तीसरी बार कामयाबी दिलाई है। वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। WHO ने कहा है कि भारत ने ट्रैकोमा को खात्मा कर दिया है, जो इस मुल्क में सेहत आमा को दरपेश एक बड़ी परेशानी थी। मगरबी एशिया के तनाजे में शिद्दत आ गई है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल के शहर हैफा पर मौसर तौर पर हमला किया है। खवातीन के T20 आलमी कप में आज दुबई में ग्रुप ए के तहत भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मर्दों के क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दूसरा T20 बैन अलाकवामी मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती का काम कल रात खत्म हो गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर कामयाबी हासिल करके लगातार तीसरी मुद्दत के लिए 90 रुकनी कानून साज असेंबली में अक्सरियत हासिल की है। दूसरी जानिब इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल लोकदल INLD ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि 3 आजाद उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। ज्यादा मशहूर असेंबली हलकों में से एक लाडवा सीट बीजेपी रहनुमा और वजीर आला नायब सिंह सैनी ने जीत ली है। साबिक वजीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अनिल विज ने अंबाला कैंट में आजाद उम्मीदवार चित्र सरवाहा को शिकस्त दी। साबिक वजीर आला और कांग्रेस रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में गढ़ी सांपला किलोई सीट जीत ली है। कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट जुलाना हल्के से कामयाब हुई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद अगली हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, जिसने 90 रुकनी असेंबली में 48 सीटों के साथ आधी से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी शुरका इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी को 29 सीटें हासिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP को 3 सीटें, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट हासिल हुई है। 7 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांधरबल दोनों ही हलकों से कामयाबी हासिल की है। पीडीपी पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बीज बिहाड़ा से हार गई है। बीजेपी रियासती सदर रविन्द्र रैना भी नौशेरा से हार गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में सच्चाई, तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने तरक्की के मामले पर बीजेपी को लगातार तीसरी बार कामयाबी दिलाई है। हरियाणा में बीजेपी के असेंबली इंतखाबात के तारीखी नतीजे के बाद नई दिल्ली में जनाब मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की।
हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया में न सिर्फ एक वाहिद पार्टी है, बल्कि ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में भी है।
हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा NDA की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है।
उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने हमेशा मुल्क को मुकद्दम रखा है और ये गरीबों की खिदमत के तहत अहद बस्ता है।
भाजपा की सरकार राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है, नेशन फर्स्ट। भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र हो या फिर हरियाणा, इन 10 सालों में भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा है।
जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने तबसरा किया कि बरसों के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में आखिरकार पुरअमन इंतखाबात मुनक्कद हुए।
जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है।
वजीर आजम ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि अगर दफा 370 को खत्म कर दिया गया तो कश्मीर जल उठेगा, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर की खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा हुआ है।
कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में वर्चुअल वसीले से मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे जिनकी लागत 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तफसीलात हमारी नामा निगार से।
वजीर आजम नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी के काम का संगे बुनियाद रखेंगे जिसकी कुल मालियत तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि इस नए बुनियादी ढांचे से बहुत से शोबों की तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। इन शोबों में मसनूआत साजी, हवाबाजी, सियाहत, लॉजिस्टिक्स और हिफ्जान सेहत शामिल है, जिससे नागपुर शहर और वसीतर विदर्भ खित्ते को फायदा होगा। इसके अलावा वजीर आजम शिरडी हवाई अड्डे पर नई मरबूत टर्मिनल इमारत का भी संगे बुनियाद रखेंगे जिस पर 645 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वजीर आजम महाराष्ट्र में मुंबई, नाशिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बल्धाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ थाने में वाके 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के कामकाज का भी आगाज करेंगे। भारत को दुनिया की हुनरमंदी की राजधानी बनाने के अपने विजन के मुताबिक वजीर आजम हुनरमंदी के भारतीय इदारे IIS मुंबई का भी इफ्तिताह करेंगे। इस नए इदारे का मकसद इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और सनत के लिए फौरी तरबियत की सहूलियात से लैस अफरादी कुव्वत तैयार करना है। इसके अलावा वजीर आजम महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र VSK का इफ्तिताह करेंगे जिसका मकसद स्कूलों को गहरी मालूमात फराहम करना है ताकि वो वसाइल को किफायत के साथ इस्तेमाल कर सकें, वालदैन और मुल्क के दरमियान रिश्ते को मजबूत बना सकें और इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों की भरपूर तरीके से अदायगी कर सकें। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से लाओस के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे में जनाब मोदी 21वें आसियान भारत सरबराह इजलास और 19वें मशरकी एशिया इजलास में शिरकत करेंगे। लाओस फिलहाल आसियान का सदर नशी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA का दौरा करेंगी। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के 8वें यौम तासीस की तकरीबात में लोगों से खिताब करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने ऐलान किया है कि भारत में सेहत आम्मा को दरपेश एक परेशानी ट्रैकोमा का इस साल खात्मा कर दिया है। इसके साथ ही भारत जनूब मशरकी एशिया में ऐसा तीसरा मुल्क बन गया है जिसने ये अहम कामयाबी हासिल की है। WHO ने कल नई दिल्ली में अपनी इलाकाई कमेटी की मीटिंग में भारत को इस सिलसिले में बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किया। ट्रैकोमा जरासीम से लगने वाली एक मुतअद्दिद बीमारी है जो आंखों पर असरअंदाज होती है और आंखों, पपोटों, नाक या गले से खारिज होने वाली रतूबत के जरिए फैलती है। ٹراکوما 1950 سے 60 کے درمیان ملک میں نابینائی کی سب سے بڑی وجہ رہی ہے. اس پر قابو پانے کے لیے حکومت نے 1963 میں قومی پروگرام شروع کیا تھا. مغربی ایشیا کے تنازع میں ڈرامائی حد تک شدت آ گئی ہے کیونکہ حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حیفا پر اب تک کا سب سے مؤثر راکٹ داغا ہے. اس دہشت گرد گروپ کی قیادت کی طرف سے یہ جارحانہ قدم اسرائیل پر حملوں کو جاری رکھنے کے ارادے سے اٹھایا گیا ہے. جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل کی فوج نے حزب اللہ کے سابق لیڈر حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشینوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اگرچہ انہوں نے ان جانشینوں کا نام نہیں بتایا. اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے خطے میں اقوام متحدہ کے فلسطین پناہ گزینوں کی ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کے رول کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گوترش نے زور دے کر کہا کہ یو این آر ڈبلیو اے پہلے سے زیادہ ناگزیر اور بے بدل ہو گئی ہے. تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے غزہ اور لبنان دونوں میں فوری طور پر جنگ بندی کے لیے کہا ہے. گوترش نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ مخاصمت دور نہ کی گئی تو خطے میں یہ جنگ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں حال ہی میں پیش کیے گئے دو بلوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جن سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی راحتی کاموں کی ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے کا کام کاج متاثر ہوگا. ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان.
اب یہ تنازع لبنان اور اسرائیل سے آگے پہنچ گیا ہے کیونکہ شام کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے دمشق میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ کیا ہے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس حملے میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، البتہ نقصانات کا اندازہ ابھی پوری طرح نہیں ہو سکا ہے. بھارتی ریزرو بینک آج اپنی دو ماہی پالیسی کا اعلان کرنے والا ہے. مالی پالیسی کی 3 روزہ میٹنگ پیر کو شروع ہوئی تھی. پچھلی 9 مدتوں سے بھارتی ریزرو بینک نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. بھارتی ریزرو بینک نے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے لیے ایک اسکالرشپ اسکیم کا اعلان کیا ہے. اسکیم کے تحت بھارت میں کسی بھی یو جی سی یا اے آئی سی ٹی ای سے تسلیم شدہ یونیورسٹی میں معاشیات یا مالیات پڑھانے والے کل وقتی اساتذہ اس مختصر مدت کی تحقیق کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں. خواتین کے T20 عالمی کپ میں بھارت آج گروپ اے کے اپنے تیسرے میچ میں سری لنکا کا سامنا کرے گا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور میچ میں آج سپہر 3:30 بجے جنوب افریقہ کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے ہوگا. دونوں ہی میچ دبئی میں کھیلے جائیں گے. کل شارجہ میں کھیلے گئے ایک میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 60 رن سے شکست دی تھی. مردوں کے کرکٹ میں آج نئی دلی میں 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. سوریہ کمار یادو کی قیادت میں بھارت سیریز میں 1-0 کی سبقت لیے ہوئے ہے. سیریز کے پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے گوالیار میں شنتو کی قیادت والی بنگلہ دیش کی ٹیم پر 7 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونن حیدر.
شکریہ اسلم. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے ہریانہ اور جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات سے متعلق خبروں کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، ہریانہ میں بی جے پی کی حیران کن جیت، کشمیر میں آئی این ڈی آئی اے اتحاد کامیاب. روزنامہ راشٹری سہارا نے شہ سرخی لگائی ہے، جموں کشمیر میں این سی کانگریس کا جلوہ، ہریانہ میں بی جے پی کی ہیٹرک. روزنامہ انقلاب کے پہلے صفحے کی ایک اور اہم سرخی ہے، فزکس کا نوبل انعام، اے آئی تحقیق کے لیے 2 سائنسدانوں کے نام. اسی خبر کو راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے بھی اپنے اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے.
اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر. بھارتی جنتا پارٹی نے ہریانہ کے قانون ساز اسمبلی میں تیسری مرتبہ تاریخ ساز کامیابی حاصل کی ہے. ادھر جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کانگریس اتحاد سرکار کا تشکیل دے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہریانہ کے عوام نے ترقی اور اچھی حکمرانی پر بی جے پی کو یہ تیسری بار کامیابی دلائی ہے. وزیر اعظم آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشٹر میں 7,600 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ بھارت نے ٹریکوما کا خاتمہ کر دیا ہے، جو اس ملک میں صحت عامہ کو درپیش ایک بڑی پریشانی تھی. مغربی ایشیا کے تنازع میں شدت آ گئی ہے کیونکہ حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حیفا پر مؤثر طور پر حملہ کیا ہے. خواتین کے T20 عالمی کپ میں آج دبئی میں گروپ اے کے تحت بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام نئی دلی میں دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔